بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ قرآن مجید کے سورہ یونس کی 47ویں، 48ویں اور 49ویں آیتوں کی تلاوت کا شرے پراپت کر رہے ہیں قاری قاسم رضیعی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة رسول، فإذا جاء بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر سمودائے کے لیے ایک رسول ہے، تو جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ نیائے پوروک کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ और कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो ये धमकी कब पूरी होगी? कह दो, मुझे न तो अपने बुरे का अधिकार है न भले का, बस जो अल्लाह चाहे वही होता है। हर जाति के लिए एक नियत समय है, जब उनका नियत समय आ गया तो उससे न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, हमारा यह प्रसारण आप शॉर्टवेव में 41 मीटर बैंड बराबर 7,445 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। फेसबुक पर हमारा पेज है facebook.com/irib हिंदी। और अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 00989035065492। श्रोताओ, आज रविवार है, आजर मास की 16, रबी उस्सानी की 20 और दिसंबर की 6 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा नोट कर लीजिए। हमेशा की तरह सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपकी सेवा में पेश किए जाएंगे, उसके बाद आप एक संक्षिप्त कार्यक्रम अनमोल बातें सुन सकेंगे। अनमोल बातें के बाद बारी होगी दैनिक कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा की। राजनीतिक चर्चा के बाद हम आपको सुनवाएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार। और दोस्तों, हमारी आज की इस सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आज कल। अब आप रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के लगभग 11,500 नए मामले सामने आए, जबकि मरने वालों की संख्या 300 से कम रही। यमनी सेना ने कहा है कि उसकी तैयारी सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इस्लामी समुदाय के दुश्मनों से भरपूर मुकाबले पर आधारित है। भारत में किसान नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। और सऊदी अरब ने बहरीन सिक्योरिटी समिट में इसराइली विदेश मंत्री की उपस्थिति में इसराइल की कड़ी आलोचना कर दी है। और अब आप हसन अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के लगभग 11,500 नए मामले सामने आए, जबकि मरने वालों की संख्या 300 से कम रही। डॉक्टर सीमा सादात लारी ने रविवार को देश में कोरोना के ताजा आंकड़े जारी करते हुए बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,561 नए मामले सामने आए, जिनमें से 1,333 मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी अन्य को आवश्यक निर्देशों के साथ होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि अब ईरान में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 11,40,547 हो गई है। प्रवक्ता ने बताया कि अब तक देश में 7,30,798 लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 24 घंटों में ईरान में 294 लोगों की कोरोना के घातक वायरस से संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। डॉक्टर सीमा सादात लारी ने बताया कि अब देश में कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 50,310 हो गई है। इस बीच पूरी दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 6,70,00,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 15,36,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है, जबकि लगभग 4.25 करोड़ लोग कोरोना को हरा चुके हैं। ईरान के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक शहीद फखरी जादे की एक वीडियो पहली बार सामने आई है, जिसमें वो न्यूक्लियर डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ईरानी मीडिया में आने वाली इस वीडियो में शहीद फखरी जादे कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डिफेंस का विषय बहुत अहम है, अगर हमसे इस क्षेत्र में कोई चूक हुई तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। एटॉमिक रेडिएशन की चपेट में आने वालों के उपचार केंद्र के शिलान्यास समारोह में अपने सहकर्मियों के बीच बोलते हुए शहीद मोहसिन फखरी जादे ने ईरान इराक युद्ध का हवाला दिया और कहा कि जंग में जब ईरान की विजय का सिलसिला शुरू हुआ तो स्थिति ये हो गई कि हम कर्बला तक पहुंचने की हालत में आ गए थे, मगर फिर सद्दाम शासन ने कायरतापूर्ण केमिकल हमले शुरू कर दिए और चूंकि हमारे पास इन हथियारों का कोई अनुभव नहीं था इसलिए हमें भारी संख्या में शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ी। डॉक्टर फखरीजादे ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत कड़वा अनुभव रहा और इससे ये पाठ मिला है कि हर मैदान में हमें होशियार रहना चाहिए। डॉक्टर फखरीजादे ने कहा कि इस समय बड़ी शक्तियां परमाणु हथियारों की बात कर रही हैं और एक दूसरे को आंखें दिखा रही हैं कि अमुक देश हमारी न्यूक्लियर अटैक स्ट्रेटेजी के मार्ग में है या हम परमाणु हमले की जद पर हैं। ये बातें अब बहुत आम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें जब होती हैं तो हम ये भी देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं IAEA और UN की तरफ से कोई एतराज भी नहीं किया जाता। यमनी सेना के एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर ने कहा है कि इस देश के सशस्त्र बलों की सैन्य तैयारी सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि ये इस्लामी समुदाय के दुश्मनों से भरपूर मुकाबले पर आधारित है। अलमसीरा टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार यमनी सेना के पांचवें क्षेत्र के कमांडर यूसुफ अल मदानी ने देश के सशस्त्र बलों और स्वयंसेवी समितियों की बड़ी उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि देश के दुश्मन बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं और युद्ध समाप्त करना ही उनके हित में होगा। उन्होंने कहा कि सऊदी गठजोड़ में शामिल देश अगर यमन के खिलाफ अपनी कार्रवाई और अपराध जारी रखते हैं तो वे अपनी तबाही को सुनिश्चित बना लेंगे। यमन के इस कमांडर ने कहा कि यमन की सशस्त्र सेना ने मिसाइल व ड्रोन युद्ध समेत सभी क्षेत्रों में ऐसी प्रगति की है जैसी क्षेत्र की अधिकतर बल्कि दुनिया की बहुत सी सेनाएं भी नहीं कर पाई हैं। यमन की राष्ट्रीय एकता सरकार ने आम क्षमा का ऐलान किया है। यमन के सशस्त्र बल के प्रवक्ता ने कहा है कि देश की राष्ट्रीय एकता सरकार उन लोगों को क्षमा देगी जो सऊदी गठबंधन के मोर्चे को छोड़ना चाहते हैं। ब्रिगेडियर यहिया सरी ने एक बयान में कहा कि जो लोग पिछले वर्षों में सऊदी गठबंधन के मोर्चे में थे और यमनी राष्ट्र के खिलाफ लड़ते रहे वे यमनी राष्ट्र की ओर लौट सकते हैं, उन्हें राज क्षमा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के उच्च अधिकारियों ने यमनियों का जनसंहार रोकने के लिए उन लोगों के लिए आम क्षमा का आदेश दिया है जो सही रास्ते की ओर लौटना चाहते हैं। ये समाचार आपकी सेवा में रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत में एक तरफ किसान नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं और सरकार से हाँ या ना में जवाब चाहते हैं और इसके बिना आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ सरकार बीच का रास्ता निकालने का ऑफर दे रही है। रविवार को भारत के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जो 3 कानून लाई है वे किसानों के हित में हैं। चौधरी ने इसी के साथ ये भी कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों की मांग के अनुसार इन कानूनों में कुछ संशोधन कर देगी। याद रहे कि किसान संगठनों से कई दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद केंद्र सरकार थोड़ी नरम पड़ी है। कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार लिखित में दे सकती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बरकरार रखा जाएगा। उधर किसान 8 दिसंबर को भारत बंद पर अड़े हुए हैं। उनकी इस हड़ताल को अनेक राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों का भी समर्थन हासिल हो गया है। कांग्रेस ने भी कहा है कि वो 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन करेगी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर वीडियो कॉल के जरिए होने वाली इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे जो कनाडा के विदेश मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन की कोशिश से सोमवार को होनी है। अभी कुछ दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से भारत में किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में बयान आया था। ब्रिटेन के 36 सांसदों और UN महासचिव ने भी किसानों का समर्थन किया है। आधिकारिक रूप से भारत ने कनाडा को सूचित किया है कि शेड्यूल इशू की वजह से जयशंकर इस वीडियो मीटिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। सूत्रों ने बताया कि जयशंकर के सोमवार की मीटिंग में शामिल न होने की वजह कनाडा के नेतृत्व के बयान से जोड़ना सही नहीं है क्योंकि नई दिल्ली ने इसे वजह नहीं कहा है। गौरतलब है कि 15 मार्च से कनाडा, ब्राजील, फ्रांस, इटली, सिंगापुर और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के साथ वीडियो कॉल कर रहा है और इस तरह की अब तक 11 मीटिंग हो चुकी है। 3 नवंबर को जयशंकर कनाडा की मेजबानी में COVID-19 के मुद्दे पर मंत्रीय समन्वय ग्रुप की 11वीं बैठक में शामिल हुए थे। सऊदी अरब ने बहरीन सिक्योरिटी समिट में इसराइली विदेश मंत्री की उपस्थिति में ज़ायोनी शासन की कड़ी आलोचना कर दी है। AP के अनुसार बहरीन सिक्योरिटी बैठक में सऊदी राजकुमार और पूर्व इंटेलिजेंस चीफ तुर्की अल फैसल ने कहा है कि फिलिस्तीनियों को उनका स्वाधीन देश हासिल करने में मदद के लिए किसी भी सामान्य समझौते की जरूरत है। तुर्की अल फैसल ने इसराइल को पश्चिमी औपनिवेशिक ताकत बताया और कहा कि इसराइल ने फिलिस्तीनियों को हिरासती कैंपों में बड़े गंभीर आरोपों के तहत कैद किया है और युवा, बूढ़े और महिलाएं वहां इंसाफ के बगैर सड़ रहे हैं। तुर्की अल-फैसल ने कहा कि तेल अबीब अपनी मनमानी करते हुए फिलिस्तीनी घरों को ध्वस्त कर रहा है और जिसे चाहे कत्ल कर देता है। तुर्की अल-फैसल दो दशकों तक सऊदी अरब के इंटेलिजेंस चीफ रहे हैं। इस समय उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, मगर उनके बयान के बारे में ये आम विचार है कि उसे सऊदी सरकार का ग्रीन सिग्नल प्राप्त रहता है। तुर्की अल-फैसल का ये बयान तब सामने आया है जब इमारात और बहरीन ने इसराइल से शांति समझौते किए हैं और ये समझौते निश्चित रूप से सऊदी अरब के इशारे पर किए गए हैं। बहरीन ने कहा है कि वो अतिग्रहित फिलिस्तीन में बनने वाले इसराइली प्रोडक्ट्स का आयात नहीं करेगा। बहरीनी न्यूज एजेंसी BNA के हवाले से रॉयटर्स के मुताबिक इस हफ्ते बहरीन के व्यापार, उद्योग व पर्यटन मंत्री जैद बिन राशिद अस्सानी ने इसराइल से प्रोडक्ट आयात करने से इनकार किया है। बहरीन के व्यापार, उद्योग व पर्यटन मंत्री जैद बिन राशिद अस्सानी ने कहा कि मनामा अतिग्रहित पश्चिमी तट और गोलान हाइट्स में बने हुए प्रोडक्ट्स को आयात करने की इजाजत नहीं देगा। फिलिस्तीन के प्रतिरोध संगठन इस्लामी जिहाद ने हिजबुल्लाह के ड्रोन अतिग्रहित फिलिस्तीन में प्रवेश और उससे ज़ायोनी गतिविधियों की तस्वीर लिए जाने की घटना को प्रतिरोध के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। इस्लामी जिहाद आंदोलन के प्रवक्ता दाऊद शाहब ने कहा कि अतिग्रहित फिलिस्तीन के हवाई सीमा में प्रतिरोध के ड्रोन का दाखिल होना और ज़ायोनी सेना के सैन्य अभ्यास सहित दूसरी गतिविधियों की तस्वीर खींचना हिजबुल्लाह की रणनीतिक उपलब्धि है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
यह तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। अनमोल बातें। दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम सच बोलने के बारे में चर्चा करेंगे। सच वही चीज है जिसे दुनिया का हर इंसान पसंद करता है, चाहे उसका संबंध दुनिया के किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हो। रोचक बात यह है कि झूठ बोलने वाला भी इस बात को पसंद नहीं करता है कि कोई उसे झूठा बोले, वो चाहता है कि उसे सच्चा बोला जाए। हदीसों में आया है कि महान ईश्वर ने किसी भी पैगंबर व संदेशक को भेजा ही नहीं मगर यह कि वो सच बोले और अमानत अदा करे। यहाँ इस बात का उल्लेख जरूरी है कि जिसकी भी अमानत हो उसे अदा करना चाहिए। अगर अमानत का मालिक अधर्मी भी हो तब भी उसे उसकी अमानत वापस की जानी चाहिए। अरब के काफिरों और अनेकेश्वरवादियों ने ही पैगंबर इस्लाम को पैगंबरी की घोषणा से पहले सादिक यानी सच बोलने वाले और अमीन अर्थात अमानतदार की उपाधि दी थी। और पैगंबर इस्लाम ने जब मक्का से मदीना पलायन किया तो काफिरों ने उन्हें अपनी जो अमानतें पैगंबर इस्लाम के पास रखी थी, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें वापस किया। यानी अमानत के वापस करने में इस बात का ध्यान रखा कि जिसकी अमानत है उसे भी वापस की जाए। अमानत का मालिक काफिर ही क्यों ना हो, इसी प्रकार अमानत वापस करने में अच्छे और बुरे का ध्यान नहीं होना चाहिए। यानी अमानत रखने वाला अच्छा हो या बुरा, उसकी अमानत किसी प्रकार की कमी व असमंजस के बिना वापस की जानी चाहिए। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस व्यक्ति को चार चीजें प्रदान की गई उसे परलोक लोक की अच्छाई प्रदान की गई है। सच बोलना, अमानत अदा करना, हलाल रोजी और अच्छा व्यवहार। हजरत अली अलैहिस्सलाम के अनुसार जिस व्यक्ति को ये चारों चीजें प्रदान की गई हैं उसे लोक पर लोक की नेकियां प्रदान कर दी गईं। दोस्तों, कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको ये बताएंगे कि हजरत अली अलैहिस्सलाम सच बोलने वाले की प्रशंसा करते हुए फरमाते हैं कि सच बोलने वाला सफलता के निकट है, जबकि झूठ बोलने वाला तबाही के मुहाने पर है। जबकि पैगम्बर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर पौत्र हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं कि नमाज रोज़े के धोखे में मत आना, इसलिए कि कभी नमाज पढ़ने वाले और रोज़ा रखने वाले की प्रवृत्ति इस प्रकार हो जाती है कि अगर वो नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना छोड़ देगा तो वो भयभीत हो जाएगा। यानी इमाम के कहने का तात्पर्य यह है कि नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना कभी इंसान की आदत बन जाती है, और अगर इंसान इन्हें छोड़ देता है तो वो भयभीत हो जाता है, इसलिए वो नमाज पढ़ता है और रोज़ा रखता है। अतः इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये देखो कि इंसान कितना सच बोलता है और कितना अमानत अदा करता है। दूसरे शब्दों में सच बोलना और अमानत का अदा करना अच्छे इंसान की पहचान है। यानी अगर किसी इंसान को ये आजमाना हो कि अमुक व्यक्ति कितना अच्छा और धार्मिक है, तो ये नहीं देखना चाहिए कि वो सही वक्त पर नमाज पढ़ता है और बहुत रोज़े रखता है, बल्कि इंसान को ये देखना चाहिए कि इंसान कितना सच बोलता है और अमानत अदा करने में वो कैसा है। इस्लामी इतिहास में ये बात मौजूद है कि नमाज पढ़ने वाले और रोज़ा रखने वालों ने इस्लाम को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाया है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जंगे सिफीन तथा कथित मुसलमानों से ही लड़नी पड़ी। इसी प्रकार हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जंगे जमल और जंगे नहरवान उन तथा कथित मुसलमानों से लड़नी पड़ी जो नमाज पढ़ते और रोज़ा रखते थे। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले भी मुसलमान ही थे, वे भी नमाज पढ़ते थे। हदीस में है कि जो सच बोलेगा उसका अमल शुद्ध होगा। इसी प्रकार सच को शांति और झूठ को चिंता का कारण बताया गया है। इसी प्रकार हदीस में सच बोलने पर बल देने के साथ कहा गया है कि सच और सच बोलने वाले दोनों एक साथ हैं और दोनों एक साथ स्वर्ग में जाएंगे, और झूठ बोलने से बचो क्योंकि झूठ और झूठ बोलने वाले दोनों एक साथ नरक में होंगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम सच की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बेहतरीन भाई वो है जो अपनी सच्चाई के साथ तुम्हें सच की ओर आमंत्रित करे और अपने अच्छे कार्यों से तुम्हें अच्छे कार्यों के लिए आमंत्रित करे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस व्यक्ति की मौत का समय विलंबित हो जाता है और उसकी रोजी में बरकत होती है जो सच बोलता है, न्याय के साथ लोगों के साथ व्यवहार करता है, अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करता है और अपने सगे संबंधियों के साथ नेकी करता है और उनसे संबंध बनाकर रखता है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दें, खुदा हाफिज।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओ, इस्लामी जगत के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या इसराइल की एक स्ट्रेटेजी है। उसकी एक वजह यह है कि उसे इस्लामी देशों की प्रगति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने अपने अवैध अस्तित्व की घोषणा के मात्र 3 महीनों के बाद मिस्र की परमाणु वैज्ञानिक की अमेरिका में हत्या कर दी। यमन के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन विमानों का पता लगाने में अमेरिकी सिस्टम के फेल हो जाने के बाद ब्रिटेन ने सऊदी अरब की मांग पर अपने सैनिकों को इस देश के तेल प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए अपने कुछ सैनिकों को सऊदी अरब की मदद के लिए भेजा है। भारत नियंत्रित कश्मीर में जहां सुरक्षा बलों पर होने वाले हमले में एक सुरक्षा कर्मी के घायल होने का समाचार है, वहीं किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन में दाखिल हो गया। किसानों के हौसले بلند ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ کالے قانون ہیں جنہیں سرکار کو واپس لینا ہی پڑے گا۔
یہ آندولن ہڑکے لگ رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ایک یہ چنگاری پورے گاموں میں جا رہی ہے۔
شوتاؤ، اسلامی جگت کے پرمانو ویگیانکوں کی ہتیا اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسے اسلامی دیشوں کی پرگتی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس نے اپنے اوید استتو کی گھوشنا کے مات 3 مہینوں کے بعد مصر کی پہلا پرمانو ویگیانک کی امریکہ میں ہتیا کر دی۔ مصر کی پرمانو ویگیانک کے کانفرنس میں بھاگ لینے کے لیے کیلیفورنیا جا رہی تھی۔ اسی پرکار اسرائیل اب تک ایران کے علاوہ کئی مصری ویگیانکوں کی ہتیا کر چکا ہے۔ مریم مہدادی،
ویگیانکوں کی ہتیا اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے، اور وہ کیول ایرانی ویگیانکوں کی ہتیا تک سیمت نہیں ہے بلکہ وہ اسلامی جگت کے ویگیانکوں کو لکش بناتا ہے۔ سمیر موسا مصر کی پہلی مہیلا پرمانو ویگیانک تھیں، جنہوں نے اویز زیونی شاسن کی ستھاپنا کے کیول 3 مہینے بعد مصر کی پرمانو سمیتی کا گٹھن کیا۔ کنتو جب وہ ایک کانفرنس میں بھاگ لینے کے لیے کیلیفورنیا جا رہی تھیں تو زائونی ایجنٹوں نے ان کی ہتیا کر دی۔
مؤکد مفیش غیر ایقاف و تعطیل،
ان ہتیاؤں کا لکش شیتر میں شانتی پورن پرمانو کارکرموں کو روکنا ہے۔ اسرائیل جانتا ہے کہ پرمانو ویگیانک پرمانو کارکرموں کی جان ہیں، وہ مصر ہوں، ایرانی ہوں یا کہیں اور کے۔ پرمانو ویگیانک وشیش شمتا رکھتے ہیں، اس لیے ان کی ہتیا کرتا ہے۔
علی مصطفی مشرف مصر کے ایک انیہ پرمانو ویگیانک ہیں، اور وہ البرٹ آئنسٹائن کے مہتوپورن ششیوں میں سے تھے کہ زائونیوں نے ان کی بھی ہتیا کر دی۔ یحییٰ المشد ایک انیہ مصری پرمانو ویگیانک ہیں جو عراق کے پرمانو کارکرم میں شامل تھے، اور ورش 1980 میں پیرس کے ایک ہوٹل میں ان کی ہتیا کر دی گئی۔ کافی سمے کے بعد فرانس کی پولیس نے المشد کی ہتیا کے لیے ایک زائونی سنگٹھن کو ذمہ دار بتایا۔
موساد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی جگت کے ویگیانکوں وشیش کر پرمانو ویگیانکوں کا انت کر دے۔ زیونی شاسن ایران اور مصر جیسے اسلامی دیشوں کی پرگتی وشیش کر پرمانو شیتر میں بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔
سمیر نجیب، نبیل القلینی، عبدالشکر، سلوہ حبیب، ودی وہاب، جرجس اور جمال حمدان مصر کے دوسرے پرمانو ویگیانک ہیں جو اپنے دیش کے مولیوان رتن تھے، پرنتو انت میں انہیں بھی سندیہاسپد استھتی کا سامنا ہوا اور موساد کے ایجنٹوں نے ان کی ہتیا کر دی۔ یدپی ان ویگیانکوں کی ہتیا دیش سے مولیوان پونجی کے چلے جانے کا کارن بنتی ہے، کنتو چونکہ شہیدوں کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے اس لیے دوسرے ان کے راستوں کو جاری رکھیں گے۔ سمیرہ منتظری، IRIB، قاہرہ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ کارکرم راجنیتک چرچا۔
یمن کے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون ویمانوں کا پتہ لگانے میں امریکی سسٹم کے وفل ہو جانے کے بعد برٹن نے سعودی عرب کی مدد کے لیے اپنے کچھ سینکوں کو بھیجا ہے۔ برطانوی سینکوں کی تعیناتی کے ساتھ برٹن نے رکشا پرنالی بھی تعینات کیا ہے۔ برٹن کے رکشا منترالے نے گھوشنا کی ہے کہ تعیناتی سیمت سمے کے لیے ہوگی۔ ساتھ ہی قائم رضوی،
یمن کے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون ویمانوں کا پتہ لگانے میں امریکی سسٹم کے وفل ہو جانے کے بعد برٹن نے سعودی عرب کی مانگ پر اپنے سینکوں کو اس دیش کے تیل پرتشٹھانوں کی سرکشا کے ادیش سے سعودی عرب بھیجا ہے۔ برٹش سینکوں کی تعیناتی کے ساتھ ہی برٹن نے رکشا پرنالی بھی تعینات کی ہے۔ برٹن کے رکشا منترالے نے اعلان کیا ہے کہ یہ تعیناتی سیمت سمے کے لیے ہی ہوگی۔
ब्रिटेन
द्वारा सैनिकों और पिक्षेपास्त्रिक रक्षा प्रणाली के सऊदी अरब भेजने से शांति स्थापित करने में सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि यमनी जनता के खिलाफ सऊदी अरब के अपराधों में तेजी आ जाएगी। बेहतर तो यह था कि ब्रिटेन सऊदी अरब को हथियारों का भेजना बंद कर देता, परंतु ब्रिटेन द्वारा सैनिकों और मिसाइल रक्षा प्रणाली का भेजा जाना यमनी जनता के संकटों के जारी रहने का सूचक है। जिस तरह से अमरीका सऊदी अरब की रक्षा नहीं कर पाया, ठीक उसी तरह ब्रिटेन भी सऊदी अरब की रक्षा नहीं कर पाएगा। उधर यमनी सेना ने आधुनिकतम हथियार बना लेने की सूचना दी है। ब्रिटेन भी इन हथियारों को अब पकड़ नहीं सकता। ब्रिटेन द्वारा सैन्य संसाधनों को सऊदी अरब भेजने का अर्थ अतिक्रमण व अपराध का जारी रहना है। उसका नतीजा ये होगा कि सऊदी अरब के अंदर और हमले किए जाएंगे। सऊदी अरब अब इस बात को समझ गया है कि शक्ति का संतुलन यमन के हित में हो चुका है। हमारी हवाई और मिसाइल शक्ति में ध्यान योग्य वृद्धि हो चुकी है। सऊदी अरब को चाहिए कि वो इन चेतावनियों पर ध्यान दे कि उसकी बंदरगाहें और उसके संवेदनशील स्थान अब हमारे निशाने पर हैं। रडार यमनी मिसाइलों का पता नहीं लगा सकते। हवाई रक्षा प्रणाली भी अब उनका पता लगाने में अक्षम है। सऊदी अरब का महत्वपूर्ण तेल प्रतिष्ठान आरामको यमनी मिसाइलों के अब निशाने पर है। इसके अलावा सऊदी अरब के महत्वपूर्ण आर्थिक व सैनिक केंद्र भी यमनी मिसाइलों व ड्रोन विमानों के निशाने पर आ चुके हैं। यमनी सेना ने बारंबार बल देकर कहा है कि अतिक्रमणों के जारी रहने की स्थिति में ये हमले भी जारी रहेंगे। सनआ से IRIB के लिए अब्दुल्ला यूसुफी।
भारत नियंत्रित कश्मीर में जहां सुरक्षा बलों पर होने वाले हमले में एक सुरक्षा कर्मी के घायल होने का समाचार है, वहीं किसानों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है और अब वो 11वें दिन में दाखिल हो गया है। किसानों के हौसले बुलंद हैं और उनका कहना है कि काले कानून हैं जिन्हें सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन।
श्रीनगर के केंद्र में स्थित जीडी बल के साजिब गिरीपोरा नामी क्षेत्र में अलगाववादी छापामार अचानक नमोदार हुए और उन्होंने एक पुलिस नाका पार्टी पर आक्रमण कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक आम नागरिक घायल हुआ है। अगर इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ा तलाशी अभियान आरंभ किया है, परंतु किसी की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। इस बीच DDC इलेक्शन के हवाले से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और अपनी पार्टी के एक नेता ने कहा है कि उन्हें ये विश्वास है कि उनके दल को लोग अपना मत देंगे। इधर नई दिल्ली में किसान पिछले 11 दिवस से जो अभियान उन्होंने आरंभ किया है और उन नीतियों के विरोध में जो आंदोलन उन्होंने आरंभ कर रखा है वो जारी है। 3 बार अगरचे वो सरकारी कर्मचारियों के साथ बातचीत कर चुके हैं, जिनमें कई केंद्र मंत्री भी शामिल हैं, परंतु अभी तक कोई भी बातचीत लाभपूर्वक साबित नहीं हुई। इस हवाले से किसान तहरीक से वाबस्ता जितने भी नेता है उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
ये आंदोलन हड़के लग रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक ये चिंगारी पूरे गांवों में जा रही है और सरकार के खिलाफ निगेटिव फीलिंग जा रही है, सरकार को आने वाले टाइम पर नुकसान होगा। अभी पूर्ण रूप से सरकार का कोई स्पष्ट वो नहीं है कि हम ये चीज कर रहे हैं। जो जिसके हाथ में है काम करने के लिए वो आदमी सामने नहीं है, तो जो मंत्री भी आ रहे हैं तो उनके भी ऊपर कुछ कोई है कंसल्ट, उन्होंने कहा कि हम स्टेटू से कंसल्ट करेंगे, हम अधिकारी से बात करेंगे और जब हम जवाब दे पाएंगे। बात कर रहे लेकिन अभी रिजल्ट नहीं निकल पाए पूर्ण रूप से। हम ये चाहते हैं कि जो बिल है ये वापसी हो जाए, अगर जरूरत होगी तो नया बिल फिर बना लेंगे।
वो सरकार की मर्जी है, इसको कितना लमकाना है, हमारे हौसले बुलंद है, हम कदे घबराएंगे नहीं, हम तो काफले के रूप में हो रहा रहे हैं, ये सरकार की मर्जी है। हाँ, 8 तारीख को पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में कोने कोने तो जो सानू हेल्प मिल रही है, 95,000 ट्रकों वाले ने हमारी मदद की है और 95 लाख।
नीति को बदलने का फैसला कले 3 बिलों का नहीं, जो 1991 से नीति चल रही है उनको बदलने का फैसला हमारे को पता थोड़ा ऐसा टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी मोदी सरकार है जैसे फैसले करते हो वापस नहीं होते, नोटबंदी वाला हो GST वाला हो, ये पंजाब के हिंदुस्तान के किसान आ जो नीति सरकार की वापस करके जाएंगे। कले बिल का मतलब नहीं, 99% सरकार मान चुकी है, हार मान चुकी है, 1% रह गया, कल उनसे बातचीत हुई है, उसमें दो फाइल में लिख दिया जैस जानो।
जी सरकार आगे से आगे टाइम दे रही है, ये एक जिद्दी प्रवृत्ति इनकी बन चुकी है, लेकिन अब किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि ये काले कानून है। इसको हम फार्मर्स के लिए डेथ वारंट भी कह रहे हैं और जब तक ये सरकार नहीं मानेगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है।
जबकि भारतीय किसान यूनियन ने 8 दिसंबर को पूरे भारत बंद की कॉल भी दे रखी है। सिप्त मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
यह तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल, पर उससे पहले आप सुनिए दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओ, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। आइए पहले सूरह इसरा की आयत नंबर 11 की तिलावत सुने।
وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا।
और मनुष्य बुराई की उसी प्रकार इच्छा करता है जैसे वो भलाई को चाहता है, और मनुष्य सदैव ही उतावला रहा है।
कुरान मजीद में मनुष्य के बारे में उतावले और कंजूस होने जैसे कई अवगुणों का उल्लेख किया गया है कि जो सबके सब अप्रशिक्षित मनुष्यों से संबंधित हैं। अर्थात यदि मनुष्य का सही प्रशिक्षण न हो तो ये अवगुण उसमें प्रकट होने लगते हैं। ये सभी अवगुण मनुष्य के माया मोह को दर्शाते हैं।
ये आयत कहती है कि चूंकि मनुष्य सदैव अधिक से अधिक लाभ कमाने के प्रयास में रहता है, अतः अनेक अवसरों पर वो बिना सोचे समझे ऐसे निर्णय या काम करता है जो उसके उतावलेपन को दर्शाते हैं। ये उतावलापन उसके लिए लाभ के बजाय हानि और क्षति का कारण बन जाता है। वस्तुतः वो भलाई चाहता है, किंतु चूंकि वो बिना सोचे समझे और उतावलेपन में काम करता है, अतः वही काम उसके लिए बुराई बन जाता है।
इस आयत से हमने सीखा कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से भलाई चाहने वाला है, किंतु उतावलेपन और अज्ञानता के कारण वो बुराई को भलाई समझ बैठता है और उसी को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
जल्दबाजी और उतावलापन मनुष्य के निर्णय और कर्म पर बुरा प्रभाव डालता है और उसे तबाही के मुहाने पर पहुँचा देता है।
आइए अब सूरह इसरा की आयत नंबर 12 की तिलावत सुने।
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا।
और हमने रात और दिन को अपनी शक्ति व तत्वदर्शिता के दो चिन्ह बनाया, फिर रात के चिन्ह को अंधकारमय और दिन के चिन्ह को प्रकाशवान बनाया, ताकि तुम अपने पालनहार की कृपा से निर्धारित आजीविका की प्राप्ति का प्रयास करो और वर्षों की संख्या तथा हिसाब को जान सको। और हमने हर वस्तु को पूरे विस्तार के साथ स्पष्ट रूप से बयान कर दिया है।
पिछली आयत में उतावलेपन की निंदा के पश्चात कुरान मजीद इस आयत में कहता है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना, व्यवस्था,
तत्वदर्शिता युक्ति और सटीक हिसाब किताब के आधार पर की है। दिन और रात दोनों ही अपने सही समय और स्थान पर प्रकट होते हैं और एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम के आधार पर अपना काम करते हैं और उनके काम का सरलता से हिसाब लगाया जा सकता है। तुम लोग भी अपने जीवन के लिए निर्धारित कार्यक्रम बनाओ ताकि ईश्वरीय अनुकंपाओं से सही ढंग से लाभ उठा सको। किंतु यदि तुम सृष्टि की व्यवस्था को सही ढंग से पहचाने बिना कोई निर्णय करोगे तो लाभ प्राप्त होने के स्थान पर स्वयं को हानि पहुंचा बैठोगे।
इस आयत से हमने सीखा कि अपने ध्रुव पर धरती की परिक्रमा तथा दिन और रात का अस्तित्व में आना ईश्वर के तत्वदर्शिता पूर्ण इरादे के अनुसार है और इस युक्ति में लोगों के लाभ को मुख्य रूप से दृष्टिगत रखा गया है।
ईश्वरीय दया व कृपा उसकी अनुकंपाओं का मार्ग प्रशस्त करती है, किंतु इन अनुकंपाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
आइए अब सूरह इसरा की आयत नंबर 13 और 14 की तिलावत सुने।
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
और हमने हर मनुष्य का कर्म पत्र उसकी गर्दन में लटका दिया है और प्रलय के दिन हम उसके लिए एक पत्र निकालेंगे जिसे वो खुला हुआ पाएगा। उसे कहा जाएगा कि अपने कर्म पत्र को पढ़ो कि आज के दिन अपने हिसाब के लिए स्वयं तुम ही काफी हो।
ये आयतें जिनमें मनुष्य को प्रलय की याद दिलाई गई है वस्तुतः पिछली आयतों का ही क्रम जारी रखती हैं कि मनुष्य को ये समझना चाहिए कि ये संसार उसका अंत नहीं है, कि वो केवल सांसारिक लक्ष्यों के लिए ही प्रयत्नशील रहे और संसार के लिए ही निर्णय और कर्म करता रहे, बल्कि उसके सभी अच्छे और बुरे कर्म जंजीर की भांति उसकी गर्दन से लटके हुए हैं और कभी भी उससे अलग नहीं होंगे। यही कर्म प्रलय के दिन एक विस्तृत और बोलते हुए कर्म पत्र के रूप में उसके समक्ष प्रकट होंगे और फिर उसे अपने सभी कर्मों का उत्तर देना होगा।
रोचक बात यह है कि कुरान मजीद के शब्दों में मनुष्य का कर्म पत्र इतना पारदर्शी और बोलता हुआ होगा कि किसी न्यायालय अथवा न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं होगी जो उस पर आरोपों को तय करे और वो उन आरोपों से स्वयं का बचाव करे, बल्कि हर मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों का फैसला कर सकता है और समझ सकता है कि उसके कर्मों का परिणाम क्या है तथा किस प्रकार का अंत उसकी प्रतीक्षा कर रहा है।
इन आयतों से हमने सीखा कि हर मनुष्य का कर्म न केवल इस संसार तक बल्कि प्रलय तक सदा उसके साथ रहता है तथा हर व्यक्ति का कल्याण या बर्बादी स्वयं उसके कर्मों पर निर्भर है।
मनुष्य जो भी करता या कहता है वो इस संसार में सुरक्षित रहता है तथा प्रलय के दिन कर्म पत्र के रूप में उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
प्रलय एकमात्र ऐसा न्यायालय है जहां अपराधी अपने पाप और अपराध का इनकार नहीं कर सकता, बल्कि वो स्वयं अपने विरुद्ध फैसला भी जारी करता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये दावा किया था कि मतदान में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, और इसी तरह इससे जुड़े कुछ दूसरे विषयों की भी चर्चा करेंगे। आशा है हमारा ये प्रयास भी आपको पसंद आएगा। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका का राष्ट्रपति बने हैं, तब से लगभग कोई हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता जब वो सुर्खियों में न रहें। उसकी मुख्य वजह यह है कि वो कब क्या कह देंगे या क्या ट्वीट कर देंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी पिछले महीने 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए जो मतदान हुए और उसके बाद जो चुनाव परिणाम सामने आए, उससे स्पष्ट हो गया कि इन चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिस्पर्धी जो बाइडेन को सफलता मिली है। परंतु ट्रंप को पहले से ही इस बात का अनुमान हो गया था कि इस चुनाव में उनकी पराजय हो सकती है, इसलिए उन्होंने 3 नवंबर से पहले ही कहना आरंभ कर दिया था कि धांधली होने की स्थिति में ही वो चुनाव हारेंगे, और चुनाव परिणामों के आ जाने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपनी हार स्वीकार नहीं की। रोचक बात यह है कि चुनाव परिणाम आ जाने के बाद उन्होंने न केवल अपनी हार स्वीकार नहीं की, बल्कि बारंबार उन्होंने बड़े पैमाने पर धांधली की बात की और कहा कि उनके मतों को चुरा लिया गया है। बहरहाल, मतदान के 3 सप्ताह के बाद ट्रंप ने सत्ता हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश तो दे दिया, परंतु उन्होंने अभी तक अपनी हार स्वीकार नहीं की है। ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि मैं सत्ता हस्तांतरित करने वाले आयोग की प्रमुख और व्हाइट हाउस के अधिकारियों का आह्वान करता हूं कि देश के हितों के दृष्टिगत वे सत्ता हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आरंभ करें। दूसरे शब्दों में ट्रंप ने अपने अमल से अपनी हार स्वीकार कर ली और बता दिया है कि अब उनकी विदाई का दिन निकट आ रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप से जब ये पूछा गया कि जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में वो भाग लेंगे या नहीं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब से शपथ ग्रहण तक बहुत सी घटनाएं हो सकती हैं। ट्रंप ने मतदान में बड़े पैमाने पर धांधली की बात कही थी और पेंसिल्वानिया, जॉर्जिया, नेवादा राज्यों की अदालतों से इस संबंध में कार्रवाई की मांग की थी, परंतु इन राज्यों की अदालतों ने ट्रंप की मांग को रद्द कर दिया, जिसकी वजह से ट्रंप की आशा निराशा में बदल गई। ट्रंप और उनकी चुनावी टीम ने बारंबार दावा किया था कि जॉर्जिया, एरिजोना, पेंसिल्वानिया और नेवादा जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, परंतु इन राज्यों की अदालतों ने ट्रंप और उनकी टीम की शिकायतों को रद्द कर दिया, और ट्रंप की कानूनी टीम भी इस परिणाम पर पहुंच गई है कि अब उसकी शिकायतों का कोई फायदा नहीं है, और इस संबंध में दावों पर आग्रह करने से ट्रंप और उनकी सरकार की छवि पहले से ही खराब हो रही है। इसी वजह से अमेरिका की वर्तमान सरकार के कुछ अधिकारियों ने यह फैसला किया है कि धीरे धीरे वे शिकायत करना छोड़ देंगे। CBS टीवी चैनल ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष वकील रूडी जुलियानी ने मिशिगन राज्य में अपनी शिकायत वापस ले ली है। उसकी एक वजह ये थी कि वो समझ गई थी कि उनके राष्ट्रपति के शासन करने का दौर बीत चुका है। समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट ने एक विज्ञप्ति प्रसारित की है जिस पर 100 से अधिक रिपब्लिकन सांसदों के हस्ताक्षर हैं। इस विज्ञप्ति में आया है कि ट्रंप द्वारा हार स्वीकार न करने और सत्ता हस्तांतरित करने की अनुमति न देने से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, और वो भी उस समय जब अमेरिका को आतंकवादी गुटों और दूसरी विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना है। We'll be right back. माइकल हेडन और निग्रो पोंटे जैसे जॉर्ज बुश के सत्ताकाल के कुछ मंत्रियों ने भी इस विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए हैं और उन्होंने रिपब्लिकन नेताओं का आह्वान किया है कि वे उन लोगों का कड़ाई से मुकाबला करें जो राज्य में चुनाव अधिकारियों को डरा धमका रहे हैं। इस विज्ञप्ति में आया है कि राष्ट्रपति ट्रंप यथावत इन चुनावों को संदिग्ध बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं और राज्य में होने वाली चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे हमारी डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंच रहा है और उसके खतरनाक परिणाम लंबे समय तक बाकी रहेंगे। रिपब्लिकन इस बात को स्वीकार करें या न करें, 4 साल पहले उन्होंने ट्रंप का समर्थन करके अमेरिका की डेमोक्रेसी और प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया है। ब्रिटेन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका इकोनॉमिस्ट ने अमेरिकी डेमोक्रेसी को पहुंचने वाले नुकसान और दुनिया की डेमोक्रेसी के भविष्य के बारे में एक लेख प्रकाशित किया है। उसके लेख में आया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव परिणामों को बदलने के लिए बहुत प्रयास किया, किंतु इस बात को दृष्टि में रखते हुए कदापि इस बात की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी कि चुनावों के बाद अमेरिकी डेमोक्रेसी अपने मार्ग से हट जाएगी। यहाँ तक कि 23 नवंबर के दिन को भी, जब ट्रंप ने सत्ता हस्तांतरित करने वाले आयोग को आदेश दिया था कि वो सत्ता को बाइडेन के हवाले करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए। इन सब के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया। इसी प्रकार उन रिपब्लिकन नेताओं ने भी अमेरिकी डेमोक्रेसी को आघात पहुंचाया जिन्होंने ट्रंप का विरोध नहीं किया और उनकी हामी हामी लाई। वोट देने वाले 5 रिपब्लिकन में से 4 ने दावा किया कि उनके मतों की चोरी कर ली गई है। इस बात के दृष्टिगत चुनाव की निष्पक्षता के बारे में संदेह पैदा हुआ। ट्रंप ने पिछले 4 सालों के दौरान ऐसे बहुत से कार्य किए हैं जिनकी वजह से अमेरिका को अपमान का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति काल के दौरान बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और इसका आरंभ व्हाइट हाउस से उनके चले जाने के बाद होगा। गत 4 वर्षों तक ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्हें कानूनी सुरक्षा प्राप्त थी, जिसकी वजह से उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, परंतु 2 महीने के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उसके बाद उन्हें संभवतः अदालत का सामना करना पड़ेगा और बहुत से सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। केवल न्यूयॉर्क की अदालत में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2 मुकदमे हैं। एक का संबंध कर से है, जबकि दूसरे का संबंध उन 2 महिलाओं से है जिन्होंने ट्रंप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस से चले जाने के बाद संभवतः अपनी उम्र के अंत तक ट्रंप अमेरिका के ऐसे पूर्व राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे जो हर कुछ समय के बाद सुर्खियों में आते रहेंगे। ट्रंप के खिलाफ संभवतः जो कानूनी कार्रवाई होगी वो इस देश के इतिहास में अभूतपूर्व होगी। ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि सत्ता होने की वजह से वो हर शिकायत के मुकाबले में क्षमा करना राष्ट्रपति का अधिकार मानते हैं। अमेरिका में मौजूद कानूनों के दृष्टिगत ये बात अपेक्षा से परे भी नहीं है कि राष्ट्रपति को भी क्षमा कर दिया जाए। अमेरिकी न्यायपालिका ने वर्ष 1974 में घोषणा की थी कि राष्ट्रपति को स्वयं को माफ करने का अधिकार नहीं है। रोचक बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशिष्ट दोस्तों को न्यायिक कार्यवाही से बचाने के लिए उन्हें क्षमा कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के पूर्व सलाहकार माइकल फ्लिन के संबंध में ट्रंप ने जो किया उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। जनरल माइकल फ्लिन पर आरोप था कि वर्ष 2016 में अमेरिका में रूसी राजदूत से उन्होंने संपर्क किया था और कहा था कि ट्रंप के सत्ता में आ जाने की स्थिति में रूस के साथ अमेरिका के संबंध बेहतर और मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंध कम हो जाएंगे। दोस्तों, ट्रंप दावा करते हैं कि जनरल माइकल फ्लिन ने जो किया اس کے بارے میں انہیں کچھ پتا نہیں تھا۔ ٹرمپ نے جب مائیکل فلن کو معاف کیا تھا تو پرتندھی سبھا کی پرمکھ نینسی پیلوسی سہیت بہت سے ڈیموکریٹوں نے ان کے اس قدم کی آلوچنا کی تھی۔ ڈیموکریٹوں نے ٹرمپ پر ستہ کے دروپیوگ کا آروپ لگایا تھا۔ نینسی پیلوسی نے ایک وگیپت میں کہا تھا کہ مائیکل فلن کو معاف کرنا ستہ کا دروپیوگ ہے۔ یہ ایسے ویکتی کو معاف کرنا ہے جس نے ودیشی دشمن کے ساتھ ہوئے سمجھوتے کے سمبندھ میں پوچھ تاچھ کے دوران ایف بی آئی سے دو بار جھوٹ بولا ہے اور انہیں دوشی پایا گیا تھا۔ ٹرمپ نے کیول جنرل مائیکل فلن کو معاف نہیں کیا ہے بلکہ ان کے علاوہ بھی کئی ادھیکاری ہیں جنہوں نے ٹرمپ کے کریا کلاپوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بولا ہے اور ٹرمپ نے انہیں معاف کر دیا۔ بہرحال پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ امریکی راجنیتا کس سیما تک ڈیموکریسی کے سدھانتوں کے پرتی کٹبدھ رہتے ہیں۔ یہی نہیں وشواسیوں نے دیکھ لیا کہ جو دوسرے دیشوں کو مانواधिकारों کی رکشا اور سمانتا و برابری کا پاٹھ پڑھاتا ہے سوئم اس کے یہاں کی سیما تک مانواधिकारों کا ہنان اور اشویت ایوم شیام ورن کے لوگوں کے ساتھ کس سیما تک نسلی بھید بھاؤ ہوتا ہے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے شیام ورن کے جارج فلائٹ کی نربم ہتیا اور امریکہ میں نسلی بھید بھاؤ کے خلاف ہونے والے پردرشنوں کو اسی پریپریکش میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو دوستو آج کے کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ انمت دیں، خدا حافظ۔
دوستو ابھی آپ نے کاریکرم آج کل سنا اور اب آپ مکھیہ سماچاروں کا سارانش ایک بار پھر سے سن لیں۔ ایران میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے لگ بھگ 11,500 نئے معاملے سامنے آئے جبکہ مرنے والوں کی سنکھیا 300 سے کم رہی۔ یمنی سینا نے کہا ہے کہ اس کی تیاری صرف سیماؤں تک سیمت نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی سمودائے کے دشمنوں سے بھرپور مقابلے پر آدھارت ہے۔ بھارت میں کسان نئے کرشی قانونوں کو واپس لیے جانے کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں جبکہ سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ قانون واپس نہیں لیے جائیں گے۔ سعودی عرب نے بحرین سیکیورٹی سمیٹ میں اسرائیلی ودیش منتری کی اپستھتی میں اسرائیل کی کڑی آلوچنا کر دی۔ تو دوستو اسی کے ساتھ یہ سوا یہیں پر سماپت ہوتی ہے۔ مریم مرداد کو انومتی دیجیے۔ خدا حافظ۔